नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। घरेलू एलपीजी उत्पादन स्थिर है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है।
एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। पैनिक बुकिंग में काफी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है।
पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों के बीच भारत ने समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त उपायों से सरकार देश में निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और अफरा तफरी में खरीदारी को रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान, मलेशिया, फ्रांस, जॉर्डन और कतर के नेताओं से बातचीत की और पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए संवाद, तनाव कम करने और शांति पर जोर दिया। ईरान ने इस्लामी कैलेंडर के पवित्र दिनों और नौरोज के उत्सव के बीच इसराइल तथा पड़ोसी खाड़ी देशों के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं। इसराइल ने भी ईरान में मनाए जा रहे नवरोज पर्व के दौरान तेहरान पर हवाई हमले किए। इस बीच बढ़ते युद्ध और मध्य पूर्व में इसराइल की सुरक्षा के लिए पेंटागन ने $200 बिलियन के अतिरिक्त आपातकालीन फंड की मांग की है। अमरीकी राष्ट्रीय ऋण रिकॉर्ड $39 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बहरीन के शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बातचीत की और ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन स्थित दान घाटी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। दिल्ली लौटने से पहले वे पारंपरिक गोवर्धन परिक्रमा भी करेंगी। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे आज नागपुर के महर्षि व्यास सभागार में भारतीय युवा संसद के 29वें राष्ट्रीय सत्र के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 2025 पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 की शुरुआत की। ये अभियान प्रिंट, रेडियो, टीवी, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया के अंतर्गत चलेगा। इसका उद्देश्य नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये अधिनियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन की अधिसूचना जारी की है। ये कदम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के बाद उठाया गया है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के बीच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने का आदेश जारी किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार रमजान के महीने के समापन का प्रतीक है। दिल्ली में ईद की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फित्र के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल तेज हवा और गरज के साथ बारिश हुई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को खेतों का दौरा करने और बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का तत्काल मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। वहीं मौसम विभाग ने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ओलावृष्टि के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।